नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारत में पहली बार विश्व कॉफी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन IOC के सहयोग से 25 से 28 सितंबर को इसे बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। संगठन इस कार्यक्रम का आयोजन कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कर रहा है। IOC अंदर सरकारी संगठन है जो कॉफी व्यापार और कॉफी उत्पादक तथा इसका उपयोग करने वाले देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO एवं सचिव KG जगदीश ने सोमवार को WCC 2023 का प्रतीक चिन्ह जारी करते हुए कहा कि टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना इस आयोजन के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। जगदीश ने कहा, एशिया में पहली बार WCC 2023 का आयोजन किया जा रहा है और इससे भारत में कॉफी की खेती करने वालों को बहुत फायदा होने वाला है। उन्होंने कहा, वैश्विक मंच पर भारत की कॉफी को बढ़ावा देने से इस कार्यक्रम से कॉफी के किसानों को नए अवसर मिलेंगे, उनके लिए नया बाजार तैयार होगा। IOC 5वीं बार WCC का आयोजन कर रहा है। इससे पहले ब्रिटेन 2001, ब्राजील 2005, ग्वाटेमाला 2010 और इथोपिया 2016 में इसका आयोजन किया जा चुका है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सोमवार को 5 पैसे गिरकर 82.23 स्थाई पर बंद हुआ। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और दुनिया की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर में मजबूती के चलते रुपए की विनिमय दर में गिरावट रही। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि आयातकों की ओर से महीने के अंत में डॉलर की मांग और विदेशी कोषों की बिकवाली के कारण घरेलू मुद्रा पर दबाव बना। हालांकि घरेलू शेयर बाजार में तेजी आने से निचले स्तर पर इसे कुछ समर्थन मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 82.23 पर खुला। दिन में कारोबार के दौरान ये 82.21 के उच्चतर स्तर तथा 82.29 के निचले स्तर तक आया। अंत में ये अपने पिछले बंद भाव से 5 पैसे टूटकर 82.23 प्रति डॉलर अस्थाई पर बंद हुआ। रुपया शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 82.18 पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.07% बढ़कर 101.70 पर आ गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.41% बढ़कर $85.34 प्रति बैरल के भाव पर रहा। BSE का 30 शेयर वाला सेंसेक्स 367.47 अंक यानी 0.56% बढ़कर 86.527.67 अंक पर बंद हुआ। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक FII शुद्ध लेवाल रहे और उन्होंने पिछले शुक्रवार को शुद्ध रूप से 1023.91 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी संपदा स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 119 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जबकि पिछले साल के समान तिमाही में उसे 220 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कंपनी ने अप्रैल जून तिमाही के वित्तीय नतीजों की शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि उसकी कुल आय दोगुनी से भी अधिक होकर 527 करोड़ रुपए हो गई। एक साल पहले के समान तिमाही में ये 259 करोड़ रुपए थी। आलोचित तिमाही में कंपनी की शुद्ध ब्याज आय 102% बढ़कर 328 करोड़ रुपए हो गई। पिछले साल की समान तिमाही में ये 162 करोड़ रुपए थी। संपदा स्फूर्ति के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी शलभ सक्सेना ने कहा, पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 702 करोड़ रुपए के कर्ज बट्टे खाते में डालने से कंपनी को घाटा उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार से हमारी सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति बेहतर होकर 1.63% हो गई। समीक्षाधीन अवधि में कंपनी के प्रबंधन अधीन परिसंपत्ति 60% बढ़कर 8,848 करोड़ रुपए हो गई। सरकार को राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष लिमिटेड NIIF और ECGC लिमिटेड से लाभांश किश्तों के रूप में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुए। सरकार चालू वित्त वर्ष में अब तक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से लाभांश के तौर पर 5,200 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंध विभाग दीपम के सचिव तुहिन कांत पांडे ने ट्विटर पर लिखा, सरकार को NIIFL और ECGC से लाभांश किश्तों के रूप में क्रमशः 3,031 करोड़ रुपए और 434 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। देश में 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए अभी तक 6.13 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न ITR दाखिल किए गए हैं। आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर खाते पर यह जानकारी दी। उसने लिखा कि कल 30 जुलाई 2023 तक 6.13 करोड़ ITR दाखिल किए गए। आज 31 जुलाई दोपहर 12 बजे तक 11.03 लाख और ITR दाखिल किए गए। पिछले साल 31 जुलाई तक करीब 5.83 करोड़ ITR दाखिल किए गए थे। ITR दाखिल करने में मदद के लिए आयकर विभाग की हेल्प डेस्क और वेबसाइट पर 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR जमा करने की अंतिम तारीख आज यानी 31 जुलाई 2023 है। विमानन सुरक्षा निगरानी संस्था BCAS के मुताबिक विमान यात्रियों के सामान में रोजाना करीब 25,000 प्रतिबंधित वस्तुएं मिलती हैं और इससे सुरक्षा कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक जुल्फिकार हसन ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश के विमानन क्षेत्र के विकास के लिए सुरक्षा आवश्यक है। उन्होंने सोमवार को कहा, हम इसमें कोई चूक नहीं कर सकते। हसन ने कहा कि यात्रियों को प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे सुरक्षा कर्मियों का काफी समय बचेगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।